दिन भर 5 दिसंबर सोमवार सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। चेन्नई में मुख्यमंत्री जयललिता की हालत नाजुक। अपोलो अस्पताल ने कहा लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं अम्मा। देश भर में सेहत के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी। मुंबई में डॉकयार्ड पर फिसला जहाज, 2 नौ सैनिकों की मौत। इटली में जनमत संग्रह में मिली हार के बाद प्रधानमंत्री मातेओ रेंजी ने दिया इस्तीफा। बीबीसी 100 वुमेन सीरीज में आज उन महिलाओं की कहानी जो शर्म का पर्दा हटाकर सुना रही हैं अपनी दास्तान।
इन इंडिया ऑल द टाइम इज्जत का सवाल, व्हाट इज्जत का सवाल, मैं तो सिर्फ।
आपकी चिट्ठियों के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। चेन्नई के अपोलो अस्पताल के अधिकारियों ने कहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जे जयललिता की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। वो लंबे समय से चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम इकट्ठा है। शाम को उनके समर्थकों ने अस्पताल के बाहर हंगामा भी किया। चेन्नई में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आज सुबह अस्पताल में ही सत्तारूढ़ AIADMK के विधायकों की बैठक भी बुलाई गई थी। खबरों के मुताबिक इस बैठक में आपात स्थिति से निपटने के लिए अहम फैसले लिए गए। शिंजो एबे जापान के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो हवाई के पल हार्बर में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए जापानी हमले के स्मारक का दौरा करेंगे। वो इस महीने के आखिर में अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ पल हार्बर जाएंगे। इससे पहले मई में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी हिरोशिमा का दौरा किया जो 1945 में अमरीकी परमाणु बम हमले में तबाह हो गया था। पल हार्बर पर जापान ने 75 साल पहले हमला किया था जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इसी घटना ने अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में खींचा था। इसी साल अगस्त में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे की पत्नी ने पर्ल हार्बर स्मारक का दौरा किया था। शिंजो एबे ने कहा कि यह दौरा अमेरिका और जापान के मजबूत रिश्तों को दर्शाता है। मैं 26 और 27 को हवाई का दौरा कर रहा हूं और राष्ट्रपति ओबामा के साथ एक मीटिंग भी करूंगा। मेरे और ओबामा प्रशासन के इन 4 सालों में हम दोनों ने अमेरिका और जापान के गठबंधन को मजबूत किया है और एशिया और पूरी दुनिया में शांति और सौहार्द के लिए काफी मेहनत की है। हिरोशिमा दौरे के दौरान राष्ट्रपति ओबामा ने एक बिना परमाणु हथियारों की दुनिया का संदेश दिया था। इसका जापानियों के दिल पर गहरा असर हुआ। ये थे शिंजो एबे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश से आ रही खबरों के मुताबिक म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को ला रही एक नाव के डूबने से दसियों लोगों के लापता होने की खबर है। कहा जा रहा है कि नाव में 30 रोहिंग्या मुसलमान सवार थे। एक फ्रेंच समाचार एजेंसी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने एक महिला को बचा लिया। इस महिला ने बताया कि नाव में बहुत ज्यादा लोग सवार थे, तभी म्यांमार फौज की एक नाव उनका पीछा करने लगी और इस अफरा तफरी में शरणार्थियों की नाव डूब गई। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन छोड़ने के फैसले पर बातचीत से पहले संसद की सहमति की जरूरत पर ब्रितानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इसे मौजूदा दौर के एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले के तौर पर देखा जा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने पिछले महीने सुनाए गए हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसमें कहा गया था कि ब्रेक्जिट प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना कि इस वक्त पूरे भारत की नजरें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अपोलो अस्पताल पर जमी हुई हैं और कान वहां से आने वाली हर आहट को सुनने के लिए पूरी सजगता से लगे हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री और AIADMK की नेता जे जयललिता को कल शाम दिल का दौरा पड़ने और उसके बाद से उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया। इसके बाद से ही उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पार्टी के विधायकों और सरकार के मंत्रियों की आपात बैठक हुई है। अपोलो के डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी हालत की निगरानी कर रही है। इसमें दिल्ली के एम्स से आए डॉक्टरों का दल भी शामिल है। दिनभर पार्टी प्रवक्ताओं और अस्पताल प्रशासन की तरफ से आ रही अलग अलग खबरों की वजह से उनके सेहत के बारे में लोगों में उलझन पैदा हुई। पूरा ब्यौरा सुनिए इमरान कुरैशी की इस रिपोर्ट में।
हमारी अम्मा वापस आएंगी, ज़रूर आएंगी, आ जाइए अम्मा, आ जाइए अम्मा। यह है जयललिता के समर्थकों की आवाज। इस तरह के नारे कल शाम से चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल के सामने बहुत जोरों से सुनने को मिल रहे हैं। अम्मा के कई समर्थकों के आंसू थम नहीं रहे। एक महिला ने कहा, जब हमने सुना कि वो अपने वार्ड से निकल गई हैं, तो हम समझे कि उनको अस्पताल से रिहा करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि उनकी सेहत गंभीर हो गई है। ये थे एक अम्मा के समर्थक महिला के शब्द। जयललिता सितंबर 22 को अपोलो अस्पताल में भर्ती हुई थी। बहुत दिनों के बाद अस्पताल ने बताया कि उनके फेफड़े में संक्रमण हुआ है, उसके साथ उन्हें डायलिसिस भी दिया जा रहा था। कल दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के डॉक्टरों ने उनकी जांच की, लेकिन शाम के 5 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें ICU में ले जाया गया और ECMO इलाज शुरू कर दिया गया। ECMO इलाज वही है जो हृदय या फेफड़ों की बहुत ही गंभीर परेशानी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब अफवाहें उड़ने लगी और लोगों को पता चला कि उनकी सेहत खराब हो गई है, तो अस्पताल के पास लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। द वीक के प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट लक्ष्मी सुब्रमण्यन ने अपोलो अस्पताल से BBC को बताया, यहाँ बहुत तनाव है। अन्ना DMK के कार्यकर्ता निराश हैं क्योंकि उनको उनके अम्मा के सेहत के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। यहाँ करीब 8 बजे से लोग इकट्ठा होने लगे हैं। राज्यपाल विद्यासागर राव यहाँ 12:02 पर पहुंचे और 12 मिनट के बाद निकल गए। यहाँ हजारों की तादाद में उनके समर्थक इकट्ठा हुए हैं और तनाव बढ़ता ही नजर आ रहा है। ये थे लक्ष्मी सुब्रमण्यन के शब्द। इस तरह का तनाव तमिलनाडु जैसे राज्य में कोई नई बात नहीं है। चेन्नई के डेक्कन क्रॉनिकल अखबार के संपादक भगवान सिंह ने कहा, तमिलनाडु के DGP राजेंद्र ने निर्देश दिया है कि हर पुलिस अधिकारी की छुट्टी रद्द कर दी गई है और 8 सुबह 7 बजे उनके अफसरों को रिपोर्ट करें। सारे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अपोलो अस्पताल के पास शाम से पुलिस की संख्या 10 गुना बढ़ा दी गई है और जयललिता के घर के पास भी भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त कर दी गई है। हाँ, तमिलनाडु के लोग बहुत तेजक हैं, जैसे कि हमने MG रामचंद्रन और राजीव गांधी के गुजर जाने पर देखा था। ये थे भगवान सिंह के शब्द। लेकिन इस तनाव के बीच जयललिता की भांजी दीपा जयकुमार को अस्पताल में नहीं जाने दिया गया। दीपा जयकुमार ने BBC को बताया, हम अस्पताल के पास करीब 3 घंटों से खड़े थे, लेकिन जब उनको पता चला कि हम कौन हैं, तो फौरन पुलिस ने हमें निकाल दिया, लेकिन हम दूर नहीं गए हैं, हम यहीं अस्पताल के पास ही हैं। ये थे दीपा जयकुमार के शब्द। अस्पताल में जयललिता के करीबी साथी शशिकला के अलावा सारे मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि जयललिता के लिए अगले 12 घंटे महत्वपूर्ण हैं। तमिलनाडु की परिस्थिति इतनी अजीब है कि जयललिता के प्रतिद्वंदी और DMK के नेता M. करुणानिधि भी अस्पताल में हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
पूरे दिन अलग अलग खबरें आती रही और शाम को एक वक्त इसमें और ज्यादा तेजी आ गई थी। पार्टी प्रवक्ता लगातार कह रहे थे कि जयललिता की स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन शाम के वक्त कुछ देर के लिए पार्टी मुख्यालय में पार्टी का झंडा झुका दिया गया था, बाद में उसे उठाया गया। सलमान रवि नजर रख रहे थे पूरे घटनाक्रम पर, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। जी सलमान, क्या शाम को जो ये कन्फ्यूजन पूरा क्रिएट हो गया और कुछ चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज़ भी चलने लगी थी, आपने देखा, और कुछ ट्वीट आए, यहाँ तक इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइन भी लगा दी थी, आपने नज़र रखी है, क्या कुछ शाम को अचानक से ये उलझन कैसे पैदा हो गई?
देखिए, शायद ये जो होड़ लगती है समाचार ब्रेक करने की, ये हो सकता है कि उसका एक ये फॉल आउट हो, क्योंकि बिना कंफर्मेशन के ये खबरें जो चली उसने और स्थिति को बिगाड़ दिया। वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे समर्थक AIA DMK और मुख्यमंत्री जयललिता के जो समर्थक खड़े थे, और वहाँ पर तोड़फोड़ की वारदात भी हुई, समर्थकों ने कुर्सियाँ भी फेंकनी शुरू की। उसके बाद अपोलो अस्पताल ने फिर ट्वीट किया और ये कहा कि वो बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अभी भी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस बीच जो घटनाक्रम रहा पूरे दिन का, उसमें शाम के वक्त में फिर बैठक हुई है विधायकों की, और ये आपात स्थिति से निपटने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, और अगर अनहोनी कुछ होती है तो फिर उस सूरत में क्या होना चाहिए, तो इसके लिए जिम्मेदारी इससे पहले भी पनीर सेल्वन जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर तमिलनाडु के, उनको भी सौंपी गई थी इससे पहले जब जय जयललिता आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में थी, तो फिर दोबारा से उनको सौंपा गया है ये सारा कुछ के वो अब तय करेंगे कि किस तरह से होगा। हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। इस बीच में जो प्रोफेसर रिचर्ड अपोलो अस्पताल के लिए जो सलाह दे रहे हैं ब्रिटेन से लगातार, तो उन्होंने भी बयान जारी कर कहा है कि बदकिस्मती से उनकी तबीयत काफ़ी नाजुक बनी हुई है और इन हालात में या तो ये बिगड़ सकती है या और बदतर हो सकती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी जो उपाय किए जा रहे हैं, चूंकि आपको पता ही है कि उनको एक्मो यानी कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन डिवाइस होती है जो हार्ट लंग मशीन के रूप में काम करती है, तो वो लगाया गया है। चूंकि कार्डियक अरेस्ट हुआ था कल उन्हें, कार्डियक अरेस्ट जो है दिल के दौरे से बिल्कुल अलग होता है, वो उस स्थिति में होता है कि जब हार्ट कमज़ोर हो जाता है और उसकी धड़कनें जो है काम करना बंद करती हैं या फिर बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, तो वैसी स्थिति में वो लगाया जाता है। तो वो अब भी उसी पर एक्मो पर हैं और डॉक्टरों को भरोसा है कि शायद इससे जल्दी उनका हो, लेकिन अगले 10-12 घंटे तो बहुत क्रूशियल हैं, कुछ भी हो सकता है।
बहुत शुक्रिया सलमान रवि इस पूरी जानकारी के लिए। चेन्नई में अपोलो अस्पताल के ठीक बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी वेंकट पेरुमल और बेंगलुरु में हैं इमरान कुरैशी, दोनों हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए कुछ ताज़ा जानकारी लेते हैं उनसे। वेंकट, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप चेन्नई में मौजूद हैं अस्पताल के बाहर, वहाँ क्या कुछ इस वक्त आप देख पा रहे हैं, वहाँ क्या कुछ हो रहा है बताइए।
जी हाँ, जब शाम को जब एक खबर फैली हुई थी कि जयललिता की मृत्यु हो गई, सभी यहाँ पूरा लोग भीड़ बैरिकेड सभी तोड़ने लगे और आगे जाने लगे, लेकिन ये पूरा भी काबू में आ गया है और ये ऑफिशियल वर्जन नहीं है। ऑफिशियली जो भी इंफॉर्मेशन अपोलो ने भी किया है कि जो गलत फाइल न्यूज आ रहा है, इसलिए अभी तक जयललिता के तबियत के बारे में खबर ठीक तरह से नहीं आया है। इसलिए जो यहाँ जो भीड़ जो बढ़ी हुई थी वो लोग अभी बाहर चले गए हैं और अभी सिचुएशन अंदर काबू में है और पुलिस का स्क्वाड्रन लगाया हुआ है पूरा अपोलो हॉस्पिटल में। अभी जो ही अंदर जाने बाहर जाने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, अभी सिचुएशन अंदर काबू में है।
जी वेंकट, हमारे साथ बेंगलुरु से सलमान इमरान कुरैशी भी हैं, क्षमा कीजिएगा इमरान। इमरान, स्वागत है आपका। ये बताइए कि राजनीतिक रूप से क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर, किस तरह की सक्रियता राजनेताओं में देख रहे हैं आप? जाहिर सी बात है कि ये उनके लिए भी एक शॉकिंग मोमेंट है। क्या क्या कुछ देख पा रहे हैं आप?
जी, मामला ये है निखिल के अभी लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग की पहली फॉर्मल मीटिंग अभी शाम में शुरू हुई है और वहां से खबर ये आ रही है कि पनीर सेल्वम को शायद उनको मुख्यमंत्री का पद लेने के लिए लेजिस्लेचर पार्टी लीडर बनाएंगे संसद पार्टी की, और जनरल सेक्रेटरी के लिए जो अभी लोकसभा के अभी डिप्टी स्पीकर हैं तंबी दोरे, उनको शायद डिप्टी स्पीकर का मतलब जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट शायद जाएगा, क्योंकि अभी तक जयललिता पहले MGR जनरल सेक्रेटरी भी थे और मुख्यमंत्री भी थे, उसके बाद जयललिता आई तो जयललिता भी जनरल सेक्रेटरी भी थी और मुख्यमंत्री भी थी, तो अभी जब जयललिता नहीं है तो जाहिर है कि ये दोनों पदों के बीच में अलग अलग दोनों लोगों को रखेंगे। मगर इसका मतलब ये है कि पन्नीर सेल्वम तेवर जाति के हैं, जो एक बहुत पावरफुल कम्युनिटी है तमिलनाडु में, और जो तम्बीदोरे हैं, तम्बीदोरे वेस्टर्न तमिलनाडु मतलब वहाँ के गौंडर कम्युनिटी के हैं, मतलब ये दोनों कम्युनिटीज बहुत पावरफुल जाति हैं।
जी जी, तमिलनाडु में। इमरान, ये बताइए कि क्या ओ पनीर सेल्वम के नाम पर सारे पार्टी के जो विधायक हैं वो एकमत हैं?
जी शायद मत एक ही हाँ पनीर सेल्वम के साथ ही रहेंगे, क्योंकि एक तरह का लोगों में एक वो था कि जयललिता उन पे इतना भरोसा करके दो वक्त उनको मुख्यमंत्री बनाई थी, तो इसलिए वो सिंपति वेव एक सिंपति शायद उनको आएगी। दूसरी बात ये है कि ये ज्यादातर डैमेज कंट्रोल है, मतलब कि अभी जो परिस्थिति है असेंबली में, तमिलनाडु की असेंबली में ज्यादा फर्क नहीं है अन्ना DMK और DMK के बीच, और अगर DMK के साथ कांग्रेस के थोड़े बहुत जो MLAs हैं वो भी हाथ एक अलायंस बना लिए तो और यहाँ से अगर यहाँ लीडरशिप नहीं मिली अन्ना डीएमके में तो शायद उनको डर है कि लोग यहाँ से अन्ना डीएमके की तरफ मतलब डीएमके की तरफ जाएंगे, तो इसीलिए एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज।
इमरान साहब, ये जो वेंकैया नायडू वहां पर पहुंचे हैं, तो क्या ये इस कोशिश में है कि एआईएडीएमके में स्प्लिट ना हो पाए और डीएमके कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता पे दावा कर दे ऐसी परिस्थिति में और ये तोड़ने में कामयाब हो जाए एआईएडीएमके के विधायकों को, तो क्या ये एफर्ट भी है?
बाकायदा है, इसीलिए तो ये मीटिंग हो रही है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि पिछले दो महीने पहले मतलब सितंबर अक्टूबर में जब ये मामला मतलब जयललिता हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी तो उस वक्त भी ये सवाल आया था कि जल्दी से जल्द पार्टी अन्ना डीएमके को एक नया इंटरिम मतलब एक मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, मगर अन्ना डीएमके उस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं थे। मगर अभी ऐसी परिस्थिति है कि खासकर उनका जो कार्डियक अरेस्ट के बाद कि ये मामला अभी बाकायदा मतलब गवर्नर से जो बातचीत हुई है कल शाम को कल रात को आज रात को जब हॉस्पिटल गए थे और आज और वेंकैया नायडू के साथ भी वेंकैया नायडू उनके साथ बहुत संबंध रखे हैं, तो उस मामले में तो जाहिर है कि केंद्र सरकार और बीजेपी का भी दबाव है इस पे।
जी इमरान कुरैशी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वेंकट पेरुमल, आपका भी बहुत शुक्रिया।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
ये बीबीसी रेडियो है और आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। आइए अब रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। भारतीय नौसेना के पश्चिमी नेवल कमांड का एक अहम जहाज आईएनएस बेतवा दिन में उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब उसे मुंबई नेवल डॉकयार्ड में अनडॉक किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि यह अपने तरह की पहली दुर्घटना है जब जहाज अनडॉक किए जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो। नौसेना ने कहा कि उसके 14 जवान उस वक्त जहाज में मौजूद थे जिनमें से 12 जवान सुरक्षित हैं पर 2 जवान लापता थे, लेकिन अब उनके मौत होने की खबर आई है। इस बारे में नौसेना के PRO DK शर्मा ने पत्रकारों को जानकारी दी। आइए सुने क्या कहा उन्होंने।
कुछ अंडर वाटर काम करने के लिए शिप को डॉक किया था बॉम्बे में, नेवल डॉकयार्ड मुंबई में उसको डॉक किया था। आज दोपहर को जब उसको अनडॉक कर रहे थे तो 13:50 मतलब 1:50 लगभग 2 बजे के करीब करीब जब उसकी अनडॉकिंग कर रहे थे तो ये हादसा हुआ है और जहाज अपने लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट कर गया है। और बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं हमारे साथ नेवी के साथ, सो वील फाइंड आउट, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या डैमेज हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये पहली बार हुआ है। वी हैव नेवर हैड इंसिडेंट ऑफ दिस काइंड बिफोर, वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड।
ये थे नौसेना के PRO DK शर्मा जो बता रहे थे कि जो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस वक्त वहां क्या कुछ हुआ था। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। इटली में जनमत संग्रह में प्रधानमंत्री मातेओ रेंजी की ओर से प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों को खारिज कर दिए जाने के बाद से विपक्ष की 2 पार्टियों ने देश में जल्दी चुनाव कराने की अपील की है। नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री अपने इस्तीफे की घोषणा कर चुके हैं और इसे बाजार में भी उथल पुथल देखी गई है। उधर यूरोपीय संघ के देशों के वित्त मंत्री ब्रसल्स में एक बैठक कर रहे हैं जिसमें इटली की राजनीतिक अस्थिरता से फैल रही आशंकाओं पर चर्चा होनी है। रोहित जोशी से सुनिए पूरा हाल।
इटली में संवैधानिक सुधारों के लिए हुए जनमत संग्रह में सरकार के खिलाफ फैसला आने के बाद विपक्षी 5-स्टार आंदोलन और एक क्षेत्रीय दल नॉर्दर्न लीग ने अपील की है कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए। नॉर्दर्न लीग के माटेओ साल्विनी ने कहा है कि यह बिल्कुल साफ है कि जनता ने किस बात के लिए वोट किया है। यह साफ है कि इटली का रुझान यूरोपीय संघ की लंबे समय तक सेवा करने का नहीं है और जो नॉर्दर्न लीग के साथ आना चाहता है यही उसकी भी बुनियादी शर्त होगी। हम देश में कभी भी दोबारा से यूरोपीय संघ के इन समाजवादियों की सरकार नहीं चाहते। हम कभी भी गलती से बन गई किसी मुद्रा और उन्मादी बैंकिंग तंत्र का गुलाम नहीं बनेंगे। नॉर्दर्न लीग के माटेओ साल्विनी के शब्द। इटली की राजधानी रोम में जनमत संग्रह के परिणामों और उसके बाद बन रहे माहौल पर लोगों की अलग अलग राय सुनने को मिली। स्टेफानिया फेल्कोन कह रही थी कि मुझे लगता है कि हम एक ऐसा देश हैं जो चीजों को तबाह करने में काफी माहिर है। हम काफी माहिर हैं ऐसे समय में साथ आने के लिए जब एक टूट रहा जहाज खुद से उबर रहा हो और उसे तबाह करने का एक मौका मिले, और अब हम एक दूसरे जहाज को ढूंढेंगे। लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, जैसा कि हमने अभी किया, रोम की एक महिला के शब्द। वहीं एक दूसरे रोमवासी का कहना था, मेरी राय के मुताबिक कुछ भी खास नहीं होगा, यह बिल्कुल वॉर ऑफ ट्रम्प की तरह है, यहाँ भी ऐसा ही होगा, चीजें वैसी ही चलती रहेंगी जैसी चलती हैं, लेकिन चलिए उम्मीद करते हैं आखिर कुछ तो बदलेगा, रोम के एक दूसरे व्यक्ति के शब्द। मैंने नहीं के पक्ष में वोट दिया था, तो इसलिए देखते हैं कि हालत क्या है। हालात बहुत ही भ्रामक हैं, मुझे राजनीतिक लिहाज से कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा, मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या कुछ होना है। मुझे कुछ हद तक अविश्वास है, लेकिन कुछ सकारात्मक चीजें भी हो रही हैं। रोम शहर से ही एक और व्यक्ति की राय। उधर ब्रसल्स में यूरोपीय संघ से जुड़े देशों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक हो रही है, जिसमें इटली के अस्थिर राजनीतिक माहौल से यूरोपीय संघ पर पड़ने वाले असर पर चर्चा होगी। इस बैठक में इटली के वित्त मंत्री को भी पहुंचना था, लेकिन उन्होंने ताजा हालातों के चलते अपना दौरा रद्द कर दिया है। बैठक में हिस्सा लेने ब्रसल्स पहुंचे जर्मनी के वित्त मंत्री वोल्फगैंग शाइबल ने कहा है कि इटली को जल्द से जल्द एक स्थिर सरकार बनाने की जरूरत है। जिन पर इसकी जिम्मेदारी है वे जानते हैं कि हालात सामान्य नहीं हैं। इटली को जल्द ही एक सक्रिय सरकार की जरूरत है, और मुझे पूरा यकीन है कि बावजूद इसके कि इटली की जनता ने संवैधानिक सुधारों को नकार दिया है, लेकिन वे सुधारों का रास्ता बरकरार रखेंगे। जर्मनी के विदेश मंत्री वोल्फगैंग शाइबेल के शब्द। हालांकि यूरोपीय संघ के कई नेता इस स्थिति को इटली का अंदरूनी संकट मान रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री रेंजी के इस्तीफे और अनिश्चितता भरे इस माहौल के बीच यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो में भारी गिरावट आई है और बाजार में उथल पुथल साफ नजर आई है। साथ ही इटली में विपक्ष का वह धड़ा काफी मजबूत स्थिति में आ गया है, जो यूरोपीय संघ से इटली के जुड़े रहने पर पुनर्विचार किए जाने की मांग करता रहा है। इटली में रविवार को प्रधानमंत्री की ओर से प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों के लिए जनमत संग्रह हुआ था। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के मुताबिक इटली की संसद के उच्च सदन सीनेट की शक्तियों को सीमित करते हुए केंद्र सरकार की शक्तियों को बढ़ाया जाना था।
इटली के प्रधानमंत्री मातेओ रेंजी का इस्तीफा। रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। और अब आपकी चिट्ठियां, जिसे लेकर आए हैं बीबीसी हिंदी के रेडियो संपादक राजेश जोशी और वंदना।
आपकी राय सोमवार की इस शाम। राजेश जोशी का नमस्कार, और स्टूडियो में मेरे साथ हैं वंदना। वंदना
नमस्ते।
वंदना के पास चिट्ठियां हैं, और एक मैं देख रहा हूं सफेद कागज पर 1, 2, 3 रंगों से लिखी हुई एक चिट्ठी है। आप चाहें तो उसी से शुरुआत करें। एक नीला रंग है, एक हरा रंग है, और एक गुलाबी
रंग। जितने रंग है उतने भाव है, इसलिए शायद हर भाव का एक
पूरी चिट्ठी पढ़ डालिए।
ठीक है, तो ये साहब हैं अजीत कुमार मुर्मू, लिखते रहते हैं, धनबाद से हैं, झारखंड से।
जी हाँ
जी। ये कहते हैं, आपको शायद पता है कि मैं ST हूँ, इसलिए मेरा पत्र शामिल नहीं कर रहे हैं।
मुर्मू जी, ये क्या लिख रहे हैं आप? मैं ST हूँ, यानी शेड्यूल ट्राइब का हूँ, इसलिए आप हमारा पत्र शामिल नहीं कर रहे हैं। ये तो आपने हमें बहुत इमोशनल कर दिया।
दिल तोड़ने वाली बात।
ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता मुर्मू साहब। ऐसा आपको कैसे लगा और क्यों लगा? आपकी चिट्ठी इस वजह से शामिल नहीं होती है कि आप ST हैं। हम तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और बीबीसी में काम करने वाला कोई भी हमारा कुलीग इस बात की कल्पना नहीं कर सकता है कि किसी के नाम, जात, धर्म या कैसे कैसे उनके प्रेफरेंसेज हैं, उनके हिसाब से हम चिट्ठियां शामिल करें या ना करें, असंभव है। आपकी चिट्ठियों में अगर कुछ कार्यक्रमों के बारे में टिप्पणी होगी या अपनी राय सुझाव आप देते होंगे, तब हम उनको शामिल करते हैं। लेकिन इसमें कुछ राय सुझाव तो होंगे।
इन्होंने इसमें अपना प्यार का इजहार भी किया
जी,
कि
पूरा पढ़
दीजिए। ना शिकवा ना शिकायत है, हमें तो बीबीसी सुनने की आदत है।
अरे अच्छा, ये दूसरे
रंग में, ये हरे
और
रंग में,
तीसरा लाल रंग में भी कुछ कहा,
ये गुलाबी रंग में है। ये तो इन्होंने भारत के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी से साक्षात्कार सुनाया जाए।
अच्छा, कैलाश सत्यार्थी से इंटरव्यू हमने तो कई बार प्रसारित किया है, वो हमारे स्टूडियो भी आए थे, लेकिन आगे अगर कुछ संभव होगा तो जरूर आपकी बात नोट कर ली गई है।
कई रंग रहे,
लेकिन लिखते रहिए और इसी तरह से रंगीन चिट्ठियां लिखते रहिए
जी। तो अगला पोस्ट कार्ड लेते हैं, ये है सीताराम राय, मत्सा गाजीपुर उत्तर प्रदेश से।
जी, सीताराम राय हमारे बहुत पुराने बुजुर्ग श्रोता हैं, मुझे लगता है एक नहीं दो पोस्ट कार्ड दिख रहे हैं मुझे।
जी जी, दो पोस्ट कार्ड
हैं,
और लिखते हैं कि बीबीसी की आलोचना या सुझाव या टिप्पणी करना या सराहना करना हर श्रोता का बराबर का हक है। बिल्कुल हक है।
एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
जी। और इन्होंने जिक्र जो किया है वो है अरविंद केजरीवाल और नितिन श्रीवास्तव की जो बातचीत,
जो चर्चित इंटरव्यू
जिसमें कुछ कहा सुनी जैसी स्थिति हुई थी। इन्होंने कहा कि केजरीवाल सवाल को रोकना बीबीसी की मर्यादा और पत्रकारिता के अनुरूप था। इसके साथ इन्होंने एक और चिट्ठी भी भेजी है जिसमें कहा है कि बदलाव जो है वो समय के अनुसार होते रहते हैं। इस तरह बीबीसी में भी बदलाव हुआ है, लेकिन सच्चाई ही बीबीसी का प्राण है
और वही हमको अपने श्रोताओं के बहुत नजदीक और बहुत करीब रखेगी।
छोटा सा एक जिक्र और है कि इनकी एक तरह से शिकायत है कि जो संवाददाता हैं और श्रोता हैं उनका जो एक तरह से आपस में बातचीत है वो पहले हुआ करती थी। कोई नया आता था तो उनसे रूबरू कराया जाता था, कोई चला जाता था तो उसके अंतिम दिन स्टूडियो में लेके आते थे। इसको ये मिस करते हैं।
उस जमाने की बात कर रहे हैं जब लंदन में हिंदुस्तान से लोग जाते थे और 3 साल के लिए जाते थे, उस वक्त ये परंपरा थी। उस परंपरा में थोड़ा सा रुकावट हुई है। दरअसल कोई ऐसा भी नहीं है, कोई सोची समझी कोई नीति है कि इंटरव्यू या नहीं किया जाएगा, परिचय नहीं करवाया जाएगा। बस ये है कि डिजिटल के लोग अलग हैं, सोशल मीडिया अलग है, टेलीविजन का थोड़ा काम है तो उसमें अलग हैं, तो रेडियो के साथ साथ अब बहुत सारा फैल गया है दायरा।
हालांकि
तो
इनका सुझाव बुरा नहीं है,
बिल्कुल परिचय तो शुरू किया ही जा सकता है।
तो इसके बाद लेते हैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा साहब की चिट्ठी, पिपराही बाजार जिला शिवहर बिहार से।
इन्होंने भी, कुशवाहा साहब ने भी एक से ज्यादा चिट्ठी लिखी और रंगीन अलग अलग पेन से।
ये तो हर बार ऐसे ही लिखते हैं अलग अलग।
क्या कहते हैं नागेंद्र?
इन्होंने जो कास्ट्रो साहब के निधन पर जो पूरा कार्यक्रम था इंडिया बोल उसको गिराकर जो ये कार्यक्रम पेश किया गया उसमें कहा कि मोहनलाल शर्मा, रेहान फजल और संदीप सोनी जी की संयुक्त मेहनत और प्रयास से इस कार्यक्रम में काफी जान आ गई।
जी, इसी के लिए शायद जो हम काम करते हैं उस पर हमें फख्र भी होता है, काफी गर्व की अनुभूति होती है कि जब ऐसे कोई मौके आते हैं तो बीबीसी की पूरी टीम एकजुट होकर के आपके लिए यानी हमारे श्रोताओं के लिए कुछ ऐसी सामग्री पेश करने की कोशिश करते हैं जो बाकी दूसरी जगहों पर शायद उपलब्ध न हो।
इन्होंने जो दूसरा एक भेजा है मैं ले लेती हूँ।
जी, दूसरा।
इसमें इन्होंने जिक्र किया है कि ओमपुरी से रेडियो के संपादक आवाज के जादूगर मान्यवर राजेश जोशी द्वारा जो साक्षात्कार लिया गया वो काफी अच्छा लगा।
ओमपुरी साहब इतने जमीनी आदमी हैं, उनसे बात करके बिल्कुल कतई ये नहीं लगता है कि किसी अपरिचित और इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय स्टार से आप बात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये बातचीत पसंद आई। तो वंदना जी माफ कीजिएगा, आपके पास चिट्ठियां और ज्यादा हैं लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहता हूँ जिनकी चिट्ठियां शामिल नहीं हो पाई या जिनके ईमेल शामिल नहीं हो पाए। हमारा पता नोट कर लीजिए, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
तो ये थी आपकी चिट्ठियां, और अगर आपने अब तक चिट्ठी नहीं लिखी है तो अगली बार जरूर लिखिएगा, हमें आपकी चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। आदेश कुमार गुप्ता आ चुके हैं खेल समाचारों के साथ। आदेश जी, आज बीसीसीआई पर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई होने वाली थी, क्या हुआ उसका?
जी देखिए, आज सबके निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी थी जहां लोढ़ा समिति की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने को लेकर बीसीसीआई के मसले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर के खराब स्वास्थ्य के कारण इसे शुक्रवार तक टाल दिया है।
ओ, इसका मतलब उन्हें थोड़ी मोहलत मिल गई।
जी देखिए, मोहलत तो भले ही मिल गई है लेकिन तलवार जो सर पर लटकी है वो वैसे ही लटकी हुई है, क्योंकि जो लोढ़ा समिति है बड़े ही कड़े शब्दों में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि बीसीसीआई जिस तरह से लगातार टालमटोल कर रहा है तो क्यों ना उसके पूरे ही पदाधिकारियों को पद से हटा दिया जाए। दरअसल बीसीसीआई के पदाधिकारी खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते, और यानी वो खुद नहीं चाहते कि हट जाएँ, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद किसी तरह से मोहलत मिल जाए। लेकिन जिस तरह से लोढ़ा समिति अपनी बात पर पूरी तरह से अड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से आदेश ही लगभग दिया हुआ है कि लोढ़ा समिति की जो सिफारिशें हैं वो सिफारिशें नहीं आदेश माना जाए, तो ऐसा लगता है कि अब 9 तारीख तक थोड़ी सी सांस लेने की वजह ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो खतरा है पदाधिकारियों के बर्खास्त होने का वो अभी भी बरकरार है।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त इस पूरी चर्चा के लिए, और आपको बता दें कि समय की कमी के कारण हम आपको 100 वुमेन सीरीज की जो कहानी आज की है वो नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन इसे हम अपने अगले कार्यक्रम घटना चक्र में जरूर सुनाएंगे। और बहुत थोड़ा समय बचा है तो जल्दी से सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। चेन्नई के अपोलो अस्पताल के अधिकारियों ने कहा है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है।
शिंजो एबे जापान के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो हवाई के पर्ल हार्बर में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए जापानी हमले के स्मारक का दौरा करेंगे। इससे पहले मई में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी हिरोशिमा का दौरा किया था। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश से आ रही खबरों के मुताबिक म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को ला रही एक नाव डूबने से दसियों लोग लापता हो गए हैं। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन छोड़ने के फैसले पर बातचीत से पहले संसद की सहमति की जरूरत पर ब्रितानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इसे मौजूदा दौर के एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले के तौर पर देखा जा रहा है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया तृप्ति श्रीवास्तव ने और आज स्टूडियो संभाला है तिलक भाटिया ने। डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।